परस्पर सन्नाति अस्तित्व अहम एकता और दैवीय क्षेत्र लोका समस्ता सुखिनो भवंतु। सभी प्राणी हर जगह सुखी और मुक्त हों। जो यात्रा आप शुरू करने जा रहे हैं वह केवल विज्ञान दर्शन या आध्यात्मिकता की खोज नहीं है, यह सबसे पहले एक नुस्खा है। एक ऐसा नुस्खा जो हमको विलीन करने, भय और लालच की पकड़ को ढीला करने और उस गहरे सत्य तक जागने के लिए है कि हम पहले से ही ईश्वर प्रकृति और पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हैं। अहम एक उपयोगी उपकरण है। यह हमें दैनिक जीवन में मार्गदर्शन करने, स्वयं और दूसरों के बीच भेद करने और लक्ष्यों का पीछा करने में सक्षम बनाता है। लेकिन जब इसे गलती से हमारी पूरी सत्ता समझ लिया जाता है तो यह एक जेल बन जाता है। अहम ही वह है जो हमें मृत्यु से डराता है, हमें संचय और संघर्ष की ओर धकेलता है और दूसरों के दुख के प्रति हमें अंधा कर देता है। यह अलगाव का भ्रम पैदा करता है और इस भ्रम से क्रूरता, शोषण और निराशा उत्पन्न होती है। अहम पर विजय प्राप्त करने का अर्थ स्वयं को नष्ट करना नहीं है, बल्कि इसके भ्रम से परे देखना है। जैसा कि आधुनिक भौतिकी प्रकट करती है कि कण क्षेत्रों की उत्तेजनाएं हैं, वैसे ही अहम चेतना के दैवीय क्षेत्र की उत्तेजना है। अहम समुद्र पर लहर की तरह उठता और गिरता है, लेकिन समुद्र बना रहता है। मृत्यु विनाश नहीं बल्कि वापसी है। अलगाव अंतिम नहीं बल्कि अस्थायी है। विश्व की बुद्धिमान परंपराएं हमेशा से यह जानती थीं। बौद्ध धर्म सिखाता है कि अहम में आसक्ति दुख का मूल है। वेदांत घोषणा करता है कि वास्तविक आत्मा ब्रह्म अस्तित्व का अनंत आधार के साथ एक है। ईसाई रहस्यवादी स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित करने के बारे में लिखते हैं और सूफी कवि दैवीय प्रेम में विलय फना के बारे में गाते हैं। संदेश हर जगह एक ही है, उच्चतम आकांक्षा अहम को मजबूत करना नहीं बल्कि इसे अनंत में विलीन करना है। यह पुस्तक विज्ञान दर्शन और आध्यात्मिकता की अंतर्दृष्टियों को एक साथ बुनती है ताकि यह दिखाया जा सके कि एकता केवल एक रहस्यमय अंतर्ज्ञान नहीं बल्कि एक सत्य है जो वास्तविकता के ढांचे में लिखा हुआ है। क्वांटम उलझाव, पारिस्थितिक परस्पर निर्भरता, सूचना सिद्धांत और रहस्यमय अनुभव एक ही समझ की ओर संदाती हैं। हम अलग अलग टुकड़े नहीं बल्कि एक पूर्ण के अभिव्यक्तियां हैं। उद्देश्य अमूर्तता नहीं है, यह परिवर्तन है। सन्नाति में जागना मतलब अलग ढंग से जीना, दूसरों के प्रति करुणा, पृथ्वी के प्रति श्रद्धा और दैवीय के प्रति खुलापन। अहम को विलीन करके हम भय को विलीन करते हैं। लालच को विलीन करके हम शोषण को विलीन करते हैं। अपनी एकता को याद करके हम स्वयं एक दूसरे और ग्रह के लिए उपचार लाते हैं। हो सकता है कि यह रचना एक मार्गदर्शक नुस्खा और भेंट के रूप में सेवा करे, और हो सकता है कि इसका फल लोका समस्ता सुखिनो भवंतु की प्राप्ति से कम न हो। एक ऐसी दुनिया जिसमें सभी प्राणी सुखी और मुक्त हों, क्योंकि अलगाव का भ्रम परास्त हो गया है और समुद्र ने हर लहर में स्वयं को पहचान लिया है। अलगाव का भ्रम। दैनिक जीवन अलगाव के जादू के तहत व्यतीत होता है। हर सुबह हम एक एकल सीमित मैं की भावना के साथ जागते हैं, जो शरीर की त्वचा और मन की सीमाओं द्वारा दूसरों से अलग होता है। यह अहम की भावना दुनिया में नेविगेट करने के लिए आवश्यक है। यह हमें एक सुसंगत कथा देता है, हमें ये कहने में सक्षम बनाता है कि यह मेरा जीवन है, और हमें कथित रूप से स्वायत्तता के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है। फिर भी हमारे भीतर कुछ इस सतह के नीचे जानता है कि अलगाव नाजुक है। हम हवा, भोजन, पानी, गर्मी और मानव समुदाय पर निर्भर हैं। 2 मिनट तक सांस रोकना रक्त शर्करा में कमी या अलगाव की चुप्पी स्वतंत्रता के भ्रम को विलीन करने के लिए पर्याप्त है। विज्ञान ने इस गहरी अंतर्ज्ञान की पुष्टि की है। स्वायत्त अहम की कोई स्पष्ट सीमा नहीं है। जीव विज्ञानी हमें याद दिलाते हैं कि हमारे शरीर सूक्ष्मजीवी जीवन से भरे हैं जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। न्यूरोसाइंटिस्ट चेतना को मस्तिष्क द्वारा बुने गए एक निर्माण के रूप में वर्णित करते हैं और भौतिकशास्त्री पदार्थ को स्वयं ठोस और अलग के रूप में नहीं बल्कि क्षेत्रों के नेटवर्क में ऊर्जा के पैटर्न के रूप में बोलते हैं। रहस्यमय परंपराएं इसे बहुत पहले से जानती थीं। बुद्ध ने सिखाया कि स्व अत्ता अंतिम नहीं है बल्कि बिना स्थायी केंद्र के प्रक्रियाओं का समूह है। वेदांत दार्शनिकों ने घोषणा की कि आत्मा वास्तविक स्व व्यक्तिगत अहम नहीं है बल्कि ब्रह्म विश्वव्यापी वास्तविकता के साथ एक है। सूफियों ने प्रिय में स्वयं के खो जाने के बारे में गाया। ईसाइयों ने स्वयं की मृत्यु के बारे में बात की ताकि ईश्वर उनके भीतर रह सके। इसलिए व्यक्तित्व की भावना इस अर्थ में गलत नहीं है कि यह एक भ्रामक चाल है। यह इस अर्थ में गलत है कि यह अपूर्ण है। अहम एक सतही लहर है, उपयोगी लेकिन अंतिम नहीं। गहरा सत्य जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है सन्नाति है कि हमारा अस्तित्व पहले से ही पूर्ण में बुना हुआ है। क्षेत्र कण नहीं। सदियों तक भौतिकी ने ब्रह्मांड को बिलियर्ड गेंदों जैसे कणों का संग्रह माना जो अंतरिक्ष में गति करते, टकराते और गोलियों की तरह बिखरते हैं। यह दृष्टिकोण अहम की स्वयं की छवि को प्रतिबिंबित करता था, अलग, स्वायत्त, सीमित। लेकिन 20वीं सदी ने इस दृष्टिकोण को तोड़ दिया। क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत ने खुलासा किया कि जिन्हें हम पहले कण मानते थे वे बिल्कुल भी स्वतंत्र वस्तुएं नहीं हैं। वे क्षेत्रों की उत्तेजनाएं हैं, पूरे अंतरिक्ष को व्याप्त करने वाले अदृश्य ऊर्जा के सागरों पर लहरें। एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्षेत्र में एक लहर है, एक फोटोन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में एक लहर है। पदार्थ स्वयं संनाती है। स्ट्रिंग सिद्धांत से और आगे ले जाता है, यह प्रस्ताव करता है कि क्षेत्रों के नीचे एक एकल मूलभूत वास्तविकता है, संनाती ऊर्जा के तार जिनके संनात सभी कणों की उपस्थिति को बनाते हैं। पदार्थ की विविधता एक ब्रह्मांडीय वाद्य यंत्र पर बजाई गई संगीत है। निहितार्थ गहरे हैं। जिन्हें हम चीजें कहते हैं वे स्वयं में मौजूद नहीं हैं, वे एक गहरे सातत्य की गड़बड़ियां हैं। ब्रह्मांड वस्तुओं का गोदाम नहीं है बल्कि संनादनों की सिम्फनी है। यह चित्र रहस्यमय दृष्टिकोणों के साथ आश्चर्यजनक रूप से समानांतर है। उपनिषद ब्रह्म को आधारभूत वास्तविकता के रूप में वर्णित करते हैं जिसके सभी रूप अभिव्यक्तियां हैं। बौद्ध रूपक विश्व को रत्नों के जाल की तरह मानते हैं जिसमें प्रत्येक सभी अन्य को प्रतिबिंबित करता है। इस प्रकाश में अहम एक कण की तरह है, दैवीय क्षेत्र की स्थानीय उत्तेजना जिसे कुछ परंपराएं ईश्वर, कुछ ताओ और कुछ शुद्ध चेतना कहती हैं। यदि सारा पदार्थ भौतिक क्षेत्रों की उत्तेजना है तो हम दैवीय क्षेत्र की उत्तेजना है, चेतना की एक लहर जो अस्थायी रूप से मैं के रूप में प्रकट होती है। जिस तरह कोई इलेक्ट्रॉन अपने क्षेत्र से अलग नहीं होता, उसी तरह कोई स्वयं चेतना के सागर से अलग नहीं होता। अहम दैवीय क्षेत्र की उत्तेजना के रूप में अहम ठोस, स्थायी और केंद्रीय प्रतीत होता है। लेकिन यह लहर की चोटी की तरह अधिक है, क्षणभर में निर्मित, गतिशील रूप से बनाए रखा गया, फिर लुप्त हो जाता है। जो एक पृथक मय के रूप में दिखाई देता है वह दैवीय क्षेत्र की एक तनाव है, अस्तित्व का असीम आधार। वेदांत इसे तत्त्वमसि तू वह है के शिक्षण में व्यक्त करता है। आत्मा व्यक्तिगत स्व कुछ और नहीं बल्कि ब्रह्म विश्वव्यापी वास्तविकता है। स्वयं दैवीय क्षेत्र से अलग नहीं है बल्कि उसका अस्थायी अभिव्यक्ति है। बौद्ध धर्म में अहम अनत्ता गैर स्व के रूप में प्रकट होता है, प्रक्रियाओं का एक संयोजन जो गलती से स्थायी केंद्र के रूप में लिया जाता है। जब अहम विलीन हो जाता है तब जो बचता है वह स्वयं चेतना है, असीम, चमकदार, अविभाज्य। ईसाई रहस्यवादी जैसे मास्टर एकार्ट ने आत्मा के सबसे गहरे आधार को ईश्वर के साथ एक के रूप में बताया। उन्होंने लिखा, जो नेत्र में ईश्वर को देखता हूँ वही नेत्र है जिससे ईश्वर मुझे देखता है, और मानव और दैवीय के बीच की सीमा को मिटा दिया। इस प्रकाश में अहम न तो गलती है और न ही शत्रु। यह आवश्यक उत्तेजना है जो चेतना को स्थानीयकरण करने, अनुभव करने, यात्रा करने की अनुमति देता है। लेकिन यह कभी अंतिम नहीं है। इसका भाग्य उस क्षेत्र में वापस लुप्त होना है जहां से यह आया। इसलिए मृत्यु विनाश नहीं बल्कि वापसी है। जैसे लहरें पानी में विलीन हो जाती हैं बिना समुद्र को नष्ट किए, वैसे ही अहम विलीन हो जाता है बिना दैवीय क्षेत्र को कम किए। जो मरता है वह अस्थायी उत्तेजना है, जो रहता है वह शाश्वत सागर है। मृत्यु एक वापसी के रूप में, मृत्यु व्यक्तित्व की अंतिम सीमा है। अहम के लिए मृत्यु विलुप्ति, कहानी का अंत, अंतिम चुप्पी के रूप में दिखाई देती है। हमारी संस्कृतियों ने इस भय के खिलाफ सटल रक्षा तंत्र बनाए हैं, अमरता के मिथक, स्वर्ग के वादे, तकनीकी उत्कृष्टता की खोज। लेकिन अगर मृत्यु विलुप्ति ही नहीं है, अगर यह एक वापसी है, भौतिकी एक आश्चर्यजनक समानांतर प्रदान करती है। ब्रह्मांड में कुछ भी वास्तव में गायब नहीं होता। पदार्थ रूपांतरित होता है, ऊर्जा अवस्था बदलती है, लेकिन अंतर्निहित पदार्थ बना रहता है। एक तारा सफेद बौने या ब्लैक होल में ढह जाता है, लेकिन इसके तत्व अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं नए संसारों को बोते हुए। स्वयं सूचना होलोग्राफिक सिद्धांत के अनुसार कभी नष्ट नहीं होती। यहां तक कि जब ब्लैक होल पदार्थ को निगल लेते हैं तो उनके द्वारा वहन की गई सूचना को घटना क्षितिज पर एन्कोडेड माना जाता है। रहस्यमय परंपराएं इस सत्य का अनुमान लगाती थीं। उपनिषद मृत्यु की तुलना नदियों से करते हैं जो समुद्र में बहती हैं, व्यक्तिगत धाराएं विलीन हो जाती हैं लेकिन पानी बना रहता है। बौद्ध धर्म निर्वाण को लौ के बुझने के रूप में बोलता है, लेकिन शून्य में नहीं, अनुबंधित, अनंत की ओर। सूफी मृत्यु को फना के रूप में वर्णित करते हैं, स्वयं की विलुप्ति जिसके बाद बका, ईश्वर में बने रहना आता है। ईसाई रहस्यवादी इसे आत्मा और दैवीय प्रिय के साथ विवाह के रूप में चित्रित करते हैं। यदि अहम दैवीय क्षेत्र की उत्तेजना है तो मृत्यु वह क्षण है जब यह उत्तेजना क्षीण हो जाती है और फिर से उस मौन में मुक्त हो जाती है जो सब कुछ संभालता है। जैसे समुद्र लहर के गिरने से कम नहीं होता, वैसे ही दैवीय क्षेत्र अहम के विलीन होने से कम नहीं होता। केवल एक चीज जो खो जाती है वह है अलगाव का भ्रम। मृत्यु को इस तरह देखना इसे एक त्रासदी से पूर्णता में पुनर्परिभाषित करना है। जीवन लहर का संक्षिप्त नृत्य है, मृत्यु समुद्र में वापसी है। हमें मिटाने के बजाय मृत्यु उसकी संबद्धता को प्रकट करती है जो कभी नहीं मरता। उलझाव और गैर स्थानिकता। क्वांटम यांत्रिकी का एक सबसे विचित्र रहस्योद्घाटन यह है कि ब्रह्मांड हमारी अंतर्ज्ञान के अनुसार स्थानीय नहीं है। उलझे हुए कण एक बार जुड़ने के बाद दूरी की परवाह किए बिना सहसंबंधित रहते हैं। आइंस्टाइन परेशान होकर इसे दूरी पर भूतिया कार्रवाई कहते थे, लेकिन प्रयोगों ने इसे निर्विवाद रूप से पुष्टि की है। विश्व गैर स्थानीय है। उलझाव स्वतंत्र वस्तुओं की शास्त्रीय दृष्टि को विलीन करता है। आकाशगंगा के विपरीत छोरों पर दो फोटोन दो अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक विस्तारित प्रणाली है। उनकी पृथक्करण स्थानिक है, उनकी सत्ता साझा है। रहस्यवादी लंबे समय से वास्तविकता को समान शब्दों में वर्णित करते रहे हैं। बौद्धिंदर का जाल रूपक कॉस्मोस को एक अनंत रत्नों के जाल के रूप में कल्पना करता है जिसमें प्रत्येक सभी अन्य को प्रतिबिंबित करता है। सूफीवाद में रूमी लिखते हैं, तू समुद्र में एक बूंद नहीं है, तू एक बूंद में पूरा समुद्र है। ईसाई रहस्यवादी संतों की साझेदारी की बात करते थे, एक अदृश्य एकता जो समय और अंतरिक्ष के पार सभी आत्माओं को जोड़ती है। क्वांटम भौतिकी में गैर स्थानिकता इन अंतर्दृष्टियों का वैज्ञानिक प्रतिध्वनि बन जाती है। चेतना भी खोपड़ियों तक सीमित नहीं हो सकती। जब रहस्यवादी सभी चीजों के साथ एकता का अनुभव करते हैं, जब ध्यान करने वाले अपनी सीमाओं के विलीन होने को महसूस करते हैं, तो वे उसी सत्य को छू सकते हैं। पृथक्करण एक दिखावा है, उलझाव वास्तविकता है। यदि अहम दैवीय क्षेत्र में एक लहर है तो उलझाव दिखाता है कि प्रत्येक लहर सभी अन्य लहरों के साथ संनाती है। क्षेत्र खंडित नहीं है बल्कि सतत है। जागना यह महसूस करना है कि अपनी स्वयं की चेतना एक एकल चिंगारी नहीं है बल्कि उस आग का हिस्सा है जो हर जगह जलती है। सूचना स्मृति और ब्रह्मांडीय अभिलेखागार। आधुनिक भौतिकी तेजी से ब्रह्मांड को सूचना के लेंस के माध्यम से देखती है। जॉन व्हीलर का कथन यह बिट से आता है, यह सुझाव देता है कि जिसे हम पदार्थ कहते हैं, कण क्षेत्र यहां तक कि अंतरिक्ष समय सूचना प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है। वास्तविकता मूल रूप से चीजें नहीं है बल्कि संबंधों के पैटर्न हैं जो एक विशाल गणना के रूप में एन्कोडेड हैं। यह दृष्टिकोण स्मृति और पहचान के बारे में हमारी सोच को पुनर्जनन करता है। हमारी व्यक्तिगत पहचान स्मृति में निहित प्रतीत होती है, लेकिन न्यूरोसाइंस दिखाता है कि स्मृति नाजुक है, लगातार पुनर्लिखित होती है। यदि व्यक्तित्व स्मृति पर निर्भर है और स्मृति अस्थिर है, तो जिस स्व को हम इतनी तीव्रता से बचाव करते हैं वह कितना वास्तविक है। इसी समय भौतिकी संकेत देती है कि स्वयं सूचना कभी गायब नहीं हो सकती। ब्लैक होल सिद्धांत में एक बार बहस थी कि क्या ब्लैक होल में गिरने वाली सूचना हमेशा के लिए खो जाती है। अब सहमति संरक्षण की ओर झुकती है, भले ही वह पहचान से परे एन्कोडेड हो, सूचना अंतरिक्ष समय की संरचना में निहित रहती है। क्या यही चेतना के लिए सच हो सकता है? जब मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है तो उसके विशिष्ट पैटर्न विलीन हो जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा वहन की गई सूचना मिट नहीं सकती बल्कि ब्रह्मांडीय अभिलेखागार में अवशोषित हो सकती है। यह अहम के अर्थ में व्यक्तिगत अमरता को नहीं दर्शाता, मेरी प्राथमिकताओं और स्मृतियों के साथ मैं का निरंतरता, बल्कि कुछ और सूक्ष्म अनुभव का सार। एक बार जब यह दैवीय क्षेत्र में सन्नाती है, हमेशा के लिए उसका हिस्सा बना रहता है। रहस्यमय परंपराएं फिर से गूंजती हैं। उपनिषद इस बात पर जोर देते हैं कि वास्तविक अस्तित्व का कुछ भी खो नहीं जाता। व्हाइटहेड ने अपनी प्रक्रिया दर्शन में लिखा कि अनुभव का हर क्षण ईश्वर की स्मृति में अवशोषित हो जाता है, हमेशा के लिए संरक्षित। बौद्ध धर्म में आलय विज्ञान भंडार चेतना की अवधारणा एक जलाशय की कल्पना करती है जिसमें प्रत्येक मानसिक छाप दर्ज की जाती है। इस प्रकार विज्ञान और आध्यात्मिकता संगाती हैं, व्यक्तित्व विलीन हो जाता है, लेकिन क्षेत्र प्रत्येक निशान को संरक्षित करता है। स्वयं मिटता नहीं बल्कि एकीकृत होता है। अहम द्वारा परिभाषित कथा के रूप में स्मृति समाप्त होती है, लेकिन ब्रह्मांडीय क्षेत्र में भागीदारी के रूप में स्मृति जारी रहती है। जीना अनंत होलोग्राम में स्वयं को लिखना है, मरना उसकी संपूर्णता के साथ विलय करना है। अहम का विलय उच्चतम आकांक्षा के रूप में। अहम के दृष्टिकोण से विलय भयावह लगता है। व्यक्तित्व का नुकसान स्वयं मृत्यु की तरह प्रतीत होता है, स्मृति व्यक्तित्व और एजेंसी का विनाश। आधुनिक पश्चिमी विचारधारा के एक बड़े हिस्से में व्यक्तित्व को पवित्र माना जाता है, स्वतंत्रता और गरिमा का सार। लेकिन विश्व की बुद्धिमान परंपराओं में अहम का विलय नुकसान नहीं बल्कि मुक्ति है। बौद्ध धर्म निर्वाण को इच्छा और अहम के बुझने के रूप में वर्णित करता है जो अलगाव के भ्रम को मुक्त करता है। निर्वाण शून्यता से दूर है, यह उन सीमाओं द्वारा अनुबंधित वास्तविकता में जागना है। वेदांत में सर्वोच्च साक्षात्कार मोक्ष है, यह खोज की आत्मा वास्तविक स्व अहम नहीं है बल्कि स्वयं ब्रह्म है, अनंत और शाश्वत। सूफीवाद में रहस्यवादी फना की बात करते हैं, ईश्वर में स्वयं की विलुप्ति जिसके बाद बका दैवीय उपस्थिति में बने रहना आता है। ईसाई रहस्यवाद में संतों ने यूनियो मिस्टिका रहस्यमय एकता के बारे में लिखा जिसमें आत्मा और ईश्वर एक हो जाते हैं। हर मामले में व्यक्तित्व के नुकसान का जोखिम अंतिम लक्ष्य के रूप में पुनर्परिभाषित होता है। अहम समुद्र की सतह पर लहर की तरह अस्थायी है। विलय करना गायब होना नहीं बल्कि सागर के रूप में जागना है। विज्ञान भी इस रूपक का समर्थन करता है। क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत हमें बताता है कि जो कण प्रतीत होते हैं अलग व्यक्तिगत वास्तव में सतत क्षेत्रों की उत्तेजनाएं हैं। क्षेत्र बना रहता है जब उत्तेजनाएं मिट जाती हैं। यदि अहम दैवीय क्षेत्र की उत्तेजना है तो मृत्यु और अहम का विलय विनाश नहीं बल्कि वापसी है। लहर गिरती है लेकिन सागर बना रहता है। इसलिए उच्चतम आकांक्षा व्यक्तित्व का संरक्षण नहीं बल्कि उससे परे जाना है। अहम में लिपटना निर्वासन में बने रहना है, विलय करना घर वापसी है। सट्टा क्षितिज बोस आइंस्टीन चेतना। विज्ञान इस बात की आकर्षक छवियां प्रदान करता है कि ऐसी उत्कृष्टता साकार रूप में कैसे दिख सकती है। पदार्थ का एक सबसे विचित्र अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पीईसी है, जहां पूर्ण शून्य के करीब ठंडे किए गए कण एक एकल क्वांटम अवस्था में गिर जाते हैं और एक एकीकृत इकाई के रूप में व्यवहार करते हैं। आमतौर पर इसके लिए गहरे अंतरिक्ष से भी ठंडे तापमान की आवश्यकता होती है, लेकिन एक रूपक के रूप में यह शक्तिशाली है। चेतना के बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होने का क्या मतलब होगा? अरबों न्यूरॉन्स के अर्थ स्वतंत्र रूप से सक्रिय होने के बजाय चेतना पूर्ण सामंजस्य में गिर जाएगी। स्वयं अब विचार स्मृति और धारणा के टुकड़ों में विभाजित नहीं होगा, चेतना एक होगी। ऐसी अवस्था को रहस्यमय साहित्य में बार बार वर्णित किया गया है। बौद्ध प्रबोधन को अक्सर विषय वस्तु द्वैत से परे असीम चेतना के रूप में वर्णित किया जाता है। ईसाई चिंतक ईश्वर में खो जाने की बात करते थे जहां कोई भेद नहीं रहता। सूफी कवियों ने प्रेम में विलय की प्रशंसा की जैसे चीनी जो पानी में गायब हो जाती है। सट्टा रूप से कोई कल्पना कर सकता है कि ऐसी अवस्थाओं में चेतना सामान्य अंतरिक्ष और समय की सीमाओं को पार कर सकती है। यदि चेतना मूल रूप से क्वांटम है तो पूर्ण सामंजस्य गैर स्थानिकता को खोल सकता है, एक मन जो अब शरीर से बंधा नहीं है बल्कि समस्त अस्तित्व के क्षेत्र के साथ सन्नाती है। समयहीनता असीमता और एकता के रहस्यमय अनुभव ऐसी अवस्था के चमक हो सकते हैं। यहाँ विज्ञान और रहस्यवाद फिर से सन्नाती हैं। चेतना का अंतिम क्षितिज व्यक्तित्व बिल्कुल नहीं हो सकता बल्कि क्षेत्र के साथ सामंजस्य हो सकता है। एक स्वयं जो पूर्ण एकता में विलीन हो जाता है वह खो नहीं जाता बल्कि पूर्ण होता है। सन्नाती जीवन जीना। यदि एकता हमारा सबसे गहरा सत्य है और अहम का विलय हमारी उच्चतम आकांक्षा है तो हमें अब व्यक्तित्व के बीच में कैसे जीना चाहिए? उत्तर है सन्नाती को सचेत रूप से जीना। नैतिक निहितार्थ। सन्नाती में जागना यह पहचानना है कि स्वयं और दूसरों के बीच की सीमाएं अस्थायी हैं। करुणा स्वाभाविक हो जाती है, न कि नैतिक कर्तव्य के रूप में बल्कि वास्तविकता की स्वीकृति के रूप में। दूसरों को नुकसान पहुंचाना स्वयं को नुकसान पहुंचाना है, दूसरों की देखभाल स्वयं की देखभाल है। सन्नाती में निहित नैतिकता केवल कर्तव्य से परे जाती है और वास्तविकता के साथ संरेखन बन जाती है। पारिस्थितिक निहितार्थ। सन्नाती हमारी पृथ्वी के साथ संबंध को भी पुनर्परिभाषित करता है। हम प्रकृति के बाहरी उपयोगकर्ता नहीं हैं, बल्कि गैया के शरीर में अंग हैं। जो हवा हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र हमें बनाए रखते हैं, वे संसाधन नहीं हैं, बल्कि हमारे अपने जीवन के विस्तार हैं। प्रबंधन भावुकता से नहीं बल्कि जागरूकता से उत्पन्न होता है। जंगल हमारे फेफड़े हैं, नदी हमारा रक्त है, वातावरण हमारी सांस है। आध्यात्मिक अभ्यास। रहस्यमय परंपराएं लंबे समय से अहम को क्षेत्र में विलीन करने के तरीके विकसित करती रही हैं। बौद्ध धर्म में ध्यान स्वयं के भ्रम को शांत करता है और असीम चेतना को प्रकट करता है। वेदांत में आत्म जांच पूछता है, मैं कौन हूँ? जब तक अहम मिट नहीं जाता और केवल शुद्ध चेतना बाकी रहती है, ईसाइयत में चिंतनशील प्रार्थना आत्मा को अंदर की ओर मोड़ती है जब तक कि वह ईश्वर में विश्राम नहीं करती। सूफीवाद में जिक्र ईश्वर के नाम को दोहराता है जब तक कि स्वयं और ईश्वर अब दो न रहें। आधुनिक विज्ञान इन अभ्यासों की परिवर्तनकारी शक्ति की पुष्टि करता है। न्यूरोसाइंस दिखाता है कि गहरी ध्यान मस्तिष्क के डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क को शांत करता है जो स्वसंदर्भित सोच के लिए जिम्मेदार सर्किट हैं। अहम के विलय की व्यक्तिपरक रिपोर्टें मस्तिष्क गतिविधि में मापने योग्य परिवर्तनों के साथ मेल खाती हैं। यह सुझाव देता है कि रहस्यमय एकता एक भ्रम नहीं बल्कि चेतना की एक प्रामाणिक अवस्था है। सागर की चेतना के साथ सीना संन्नाति जीना इस जागरूकता को दैनिक जीवन में ले जाना है। प्रत्येक क्षण एक अवसर है यह याद रखने का, मैं केवल यह लहर नहीं हूँ, मैं सागर हूँ। कृतज्ञता, नम्रता और करुणा स्वाभाविक रूप से इस जागरूकता से प्रवाहित होती हैं। यहाँ तक कि साधारण कार्य, खाना, सांस लेना, बोलना पवित्र हो जाते हैं जब उन्हें दैवीय क्षेत्र की अभिव्यक्तियों के रूप में देखा जाता है। निष्कर्ष, सागर बना रहता है। इस यात्रा की शुरुआत में हमने पूछा कि इसका क्या अर्थ है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, कि जीवन, चेतना और स्वयं ब्रह्मांड संन्नाति हो सकता है। हमने क्वांटम भौतिकी, पारिस्थितिकी, दर्शन और रहस्यवाद के माध्यम से यात्रा की। प्रत्येक पथ अपनी भाषा के बावजूद एक ही क्षितिज की ओर इशारा करता था, स्वयं अलग नहीं है, व्यक्तित्व अस्थायी है और एकता सबसे गहरा सत्य है। क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत ने हमें दिखाया कि जो कण प्रतीत होते हैं वे क्षेत्रों की उत्तेजनाएं हैं, एक अदृश्य सातत्य में अस्थायी लहरें। स्ट्रिंग सिद्धांत ने जोड़ा कि विविधता संगीत है, एक एकल अंतर्निहित वाद्य यंत्र की संनादन। इस दृष्टिकोण में पदार्थ स्वयं संबंध, लय और संनादन में विलीन हो जाता है। पारिस्थितिकी ने प्रकट किया कि जीवन प्रजातियों का एक टुकड़ा नहीं है बल्कि परस्पर निर्भरता का एक विशाल तंत्र है। जंगल कवकीय नेटवर्क के माध्यम से बोलते हैं, महासागर रक्त की तरह पोषक तत्वों का संचलन करते हैं, पृथ्वी एक पूर्ण के रूप में सांस लेती है। गया परिकल्पना ग्रह को पृष्ठभूमि के रूप में नहीं बल्कि एक जीवित जीव के रूप में पुनर्परिभाषित करती है और हमें इसके कोशिकाओं के रूप में। दर्शन ने अन्वेषण को और गहरा किया। फिनोमिनोलॉजी ने दिखाया कि चेतना कभी अलग नहीं होती बल्कि साकार होती है, अपने विश्व के साथ संनाती है। लॉक की स्मृति पर चिंतन ने हमें याद दिलाया कि पहचान नाजुक है, निर्मित और समय में विस्तारित। पेंसाइकिड ने सुझाव दिया कि चेतना व्यक्तियों तक सीमित नहीं है बल्कि वास्तविकता को व्याप्त करती है, प्रत्येक मन पूर्ण का एक प्रतिबिंब है। रहस्यवाद हमें और आगे ले गया। उपनिषदों में हमने शिक्षण की खोज की, तत्त्वम असि तू वह है। बौद्ध धर्म में गैर स्व की शिक्षण ने अहम को भ्रम के रूप में प्रकट किया। सूफीवाद में फना ने स्वयं को ईश्वर में विलीन कर दिया। ईसाई रहस्यवाद में यूनियो मिस्टिका ने प्रेम को दैवीय एकता में पूर्ण किया। हर जगह अहम एक लहर के रूप में प्रकट हुआ, दैवीय क्षेत्र एक सागर के रूप में। तो मृत्यु क्या है? विज्ञान हमें बताता है कि ऊर्जा और सूचना कभी खो नहीं जाती। रहस्यवाद हमें बताता है कि व्यक्तित्व कभी अंतिम नहीं है। साथ में वे पुष्टि करते हैं, मृत्यु एक वापसी है। लहर गिरती है, सागर बना रहता है। अहम विलीन हो जाता है, क्षेत्र बना रहता है। और आकांक्षा क्या है? यहाँ सबसे बड़ा विरोधाभास निहित है। अहम विलय से डरता है, स्थायित्व में लिप्तता है, नुकसान से डरता है। लेकिन बुद्धिमान परंपराएं घोषणा करती हैं कि विलय अंत नहीं बल्कि लक्ष्य है। स्वयं को खोना पूर्ण में जागना है। निर्वाण, मोक्ष, थियोसिस, प्रबोधन प्रत्येक एक ही सत्य को नाम देता है। उच्चतम आकांक्षा व्यक्तित्व का संरक्षण नहीं बल्कि उससे परे जाना है। विज्ञान भी इस भाग्य को फुसफुसाता है। उलझाव में हम एक ऐसे ब्रह्मांड को देखते हैं जिसमें पृथक्करण एक भ्रम है। होलोग्राफिक सिद्धांत में हम देखते हैं कि सूचना कभी नष्ट नहीं होती। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स में हम देखते हैं कि विविधता कैसे सामंजस्य में गिर सकती है। ये रहस्यवाद के प्रमाण नहीं है लेकिन वे इसके दृष्टिकोण के साथ तुकबंदी करते हैं, व्यक्तित्व विलीन हो जाता है लेकिन क्षेत्र बना रहता है। तो संन्नाति जीवन जीने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है करुणा, यह जानना कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना स्वयं को नुकसान पहुंचाना है। इसका अर्थ है प्रबंधन, पृथ्वी की देखभाल करना हमारे बड़े शरीर के रूप में। इसका अर्थ है आध्यात्मिक अभ्यास, ध्यान, चिंतन, स्मरण, जीवन से भागने के लिए नहीं बल्कि इसमें जागने के लिए। संन्नाति जीवन जीना यह जागरूकता के साथ जीना है कि प्रत्येक विचार, प्रत्येक कार्य, प्रत्येक सांस दैवीय क्षेत्र में एक लहर है। अंत में लहर और सागर का रूपक हमें घर ले जाता है। लहर उठती है, नृत्य करती है और गिरती है। यह अपने अंत से डरती है, लेकिन सागर कभी समाप्त नहीं होता। लहर कभी सागर से अलग नहीं थी, केवल अस्थायी रूप से मैं के रूप में बनी थी। जब यह विलीन हो जाती है तो कुछ भी खो नहीं जाता, सागर बना रहता है, विशाल, असीम, शाश्वत। इस सत्य में जागना, बिना भय के जीना, बिना पछतावे के मरना, और प्रत्येक प्राणी में न केवल दूसरे को बल्कि स्वयं को देखना है। अलगाव का भ्रम ढह जाता है और जो बाकी रहता है वह सरल अनंत सत्य है। हम कभी लहर नहीं थे, हम हमेशा सागर थे। संदर्भ: भौतिकी और सूचना सिद्धांत, बेल, जे. एस. 1964, आइंस्टीन पोडोल्स्की रोसेन विरोधाभास पर, फिजिक्स, फिजीक 1395-200, बोहम, डी. 1980, संपूर्णता और निहित व्यवस्था, रोटलिज, ग्रीन, बी. 1999, एलिगेंट यूनिवर्स, सुप्रास्ट्रिंग्स, छिपे आयाम और अंतिम सिद्धांत की खोज, डब्ल्यू डब्ल्यू नॉर्टन, हॉकिंग, एस. डब्ल्यू. 1975, ब्लैक होल्स द्वारा कण सृजन, कम्युनिकेशंस इन मैथमेटिकल फिजिक्स 43-3, 199-220, पेन रोज, आर. 1989, सम्राट का नया मन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, सस्काइंड, एल. 2008, ब्लैक होल युद्ध, क्वांटम यांत्रिकी के लिए विश्व को सुरक्षित करने के लिए स्टीवन हॉकिंग के साथ मेरा युद्ध, लिटिल, ब्राउन, व्हीलर, जे. ए. 1990, सूचना, भौतिकी, क्वांटम, लिंक्स की खोज, जटिलता, एंट्रोपी और सूचना की भौतिकी में, एडिसन वेस्ली, ज़ुरिक, डब्ल्यू. एच. 2003, निकोहरेंस, स्वचयन और शास्त्रीय की क्वांटम उत्पत्ति, रिव्यूज ऑफ मॉडर्न फिजिक्स 75-3, 715-775, चेतना और न्यूरोसाइंस, हेमरॉक, एस और पेनरोज, आर. 2014, ब्रह्मांड में चेतना, ऑक और सिद्धांत की समीक्षा, फिजिक्स ऑफ लाइफ रिव्यूज 11-1, 39-78, जेम्स, डब्ल्यू. 1902-2004, धार्मिक अनुभवों की विविधता, पेंगुइन क्लासिक्स, मेट सिंगर, टी. 2009, अहम सुरंग, मन का विज्ञान और स्वयं का मिथक, बेसिक बुक्स, वरेला, एफ. जे. टॉम्पसन, ई. और रोश, ई. 1991, साकार मन, संज्ञानात्मक विज्ञान और मानव अनुभव, MIT प्रेस, दर्शन और प्रक्रिया चिंतन, लेबनिट्स, जी. डब्ल्यू. 1714-1991, मोनाडोलॉजी, आर. एरियो और डी. गार्बर, संपादक, दार्शनिक निबंध में, हैकेट, लॉक, जे. 1690-1975, मानव समझ पर निबंध, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, मर्लो पॉन्टी, एम. 1945-2012, धारणा की फिनोमिनोलॉजी, रोटलिज, नागार्जुन, दूसरी शताब्दी, मूलमध्यमककारिका, मध्यमार्ग पर मूल छंद, विभिन्न अनुवाद, व्हाइटहेड, ए. एन. 1929-1978, प्रक्रिया और वास्तविकता, फ्री प्रेस, आध्यात्मिक और रहस्यमय परंपराएं, अनाम, 14वीं शताब्दी, अज्ञान का बादल, एकार्ट, एम. लगभग 1310-2009, आवश्यक उपदेश, पॉलिस्ट प्रेस, रूमी, जे. 13वीं शताब्दी 1995, आवश्यक रूमी, कोलमैन बाक्स द्वारा अनुवाद, हापर वन. उपनिषद, लगभग 800-200 ईसा पूर्व, एकनाथ ईश्वरन 1987 और पैट्रिक ओलिवेल 1996 द्वारा अनुवाद, बुद्ध, लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, धम्मपद, विभिन्न अनुवाद, अल-गज़ाली, 11वीं शताब्दी 1998, प्रकाश की आला, इस्लामिक टेक्स्ट सोसाइटी, पारिस्थितिकी और प्रणालीगत चिंतन, कैपरा, एफ. 1996, जीवन का जाल, जीवित प्रणालियों की नई वैज्ञानिक समझ, एंकर बुक्स, लवीलॉक, जे. 1979, गेया, पृथ्वी पर जीवन का एक नया दृष्टिकोण, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, मार्गुलिस एल और सगन डी 1995. जीवन क्या है. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस. शब्दावली आलय विज्ञान संस्कृत. योगाचार बौद्ध धर्म में भंडार चेतना. यह मन की एक आधारभूत परत को संदर्भित करता है जो सभी कर्मिक छापों और अनुभव को संग्रहित करता है. चेतना का एक प्रकार का अवचेतन बीज बिस्तर. आत्मा संस्कृत. हिंदू दर्शन में आंतरिक स्व या आत्मा. अद्वैत वेदांत में आत्मा अंततः ब्रह्म विश्वव्यापी चेतना के साथ एक है. बका अरबी. सूफी रहस्यवाद में स्वयं की विलुप्ति फना के बाद ईश्वर में बने रहने की अवस्था. यह दैवीय के साथ स्थायी एकता को दर्शाता है. बोस आइंस्टीन कंडेंसर बीसी. पदार्थ की एक अवस्था जो अत्यंत निम्न तापमान पर बनती है जहां कण एक एकल क्वांटम अवस्था पर कब्जा करते हैं और एक एकीकृत इकाई के रूप में व्यवहार करते हैं. आपके पांडुलिपि में अक्सर चेतना की एकता को दर्शाने के लिए रूपक के रूप में उपयोग किया जाता है. ब्रह्म संस्कृत. वेदांत दर्शन में अंतिम अपरिवर्तनीय वास्तविकता अनंत शाश्वत और सभी अस्तित्व का आधार. सभी रूप और स्व ब्रह्म की अभिव्यक्तियां माने जाते हैं. चेतना डिफॉल्ट मोड नेटवर्क. मस्तिष्क में एक तंत्रिका नेटवर्क जो विश्राम और स्व संदर्भित सोच के दौरान सक्रिय होता है. शोध दिखाता है कि गहरी ध्यान और अहम के विलय के अनुभव अक्सर इस नेटवर्क को दबाते हैं जो स्वयं की सीमाओं के नुकसान के साथ सन्नाटती है. जिक्र अरबी. सूफी भक्ति अभ्यास जिसमें दैवीय नामों या वाक्यांशों की पुनरावृत्ति शामिल है जिसका उपयोग हृदय को केंद्रित करने और अहम को ईश्वर की स्मृति में विलीन करने के लिए किया जाता है. अहम मैं की मनोवैज्ञानिक भावना स्वयं की छवि जिसके साथ हम तादात्म्य करते हैं. कई आध्यात्मिक परंपराओं में अहम को एक अस्थायी संरचना के रूप में देखा जाता है न कि अंतिम स्व के रूप में. उलझाव क्वांटम. एक क्वांटम घटना जिसमें दो या अधिक कण इस तरह से जुड़े रहते हैं कि एक का अवस्था तुरंत दूसरे की अवस्था को प्रभावित करता है दूरी की परवाह किए बिना. आध्यात्मिक और अस्तित्वगत एकता को वर्णित करने के लिए रूपक के रूप में उपयोग किया जाता है. फना अरबी. सूफी शब्द जो अहम या स्वयं की दैवीय में विलुप्ति को दर्शाता है. यह व्यक्तिगत पहचान का विलय है जिसके बाद अक्सर बका आता है. क्षेत्र क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत. एक सतत इकाई जो अंतरिक्ष में फैलती है जिसमें से कण स्थानीय उत्तेजनाओं या लहरों के रूप में उभरते हैं. पांडुलिपि में चेतना या दैवीय उपस्थिति के लिए रूपक के रूप में उपयोग किया जाता है. व्यया परिकल्पना. जेम्स लवेलॉक द्वारा प्रस्तावित एक वैज्ञानिक सिद्धांत जो सुझाव देता है कि पृथ्वी एक स्वनियामक जीवित तंत्र के रूप में कार्य करता है. अक्सर पारिस्थितिक आध्यात्मिक और प्रणालीगत चिंतन के संदर्भ में उपयोग किया जाता है. होलोग्राफिक सिद्धांत. भौतिकी में एक सैद्धांतिक विचार जो यह कहता है कि अंतरिक्ष के एक आयतन में सभी सूचनाएं अंतरिक्ष की सीमा पर इनकोडेड डेटा के रूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं. यह सुझाव देता है कि सूचना वास्तव में कभी खो नहीं जाती यहां तक कि ब्लैक होल्स में भी. इंदर का जाल. महायान बौद्ध रूपक जो ब्रह्मांड को परस्पर सन्नाती रत्नों के अनंत जाल के रूप में वर्णित करता है जिसमें प्रत्येक सभी अन्य को प्रतिबिंबित करता है परस्पर निर्भरता और अविभाज्यता का प्रतीक. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु संस्कृत. एक पवित्र मंत्र जिसका अर्थ है सभी प्राणी हर जगह सुखी और मुक्त हों. यह करुणा और विश्वव्यापी कल्याण की आकांक्षा को व्यक्त करता है. मोक्ष संस्कृत. हिंदू धर्म में जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति यह साक्षात्कार की आत्मा ब्रह्म के साथ एक है और अहम एक भ्रम है. निर्वाण संस्कृत पाली. बौद्ध धर्म में इच्छा और अहम का बुझना. यह विनाश नहीं बल्कि सशर्त अस्तित्व से मुक्ति है असीम चेतना और शांति की अवस्था. गैर स्थानिकता. क्वांटम यांत्रिकी में यह विचार कि कण विशाल दूरी पर तुरंत सहसंबंधित हो सकते हैं जो पृथक्करण की शास्त्रीय धारणाओं को चुनौती देता है. पांडुलिपि में सन्नाती चेतना के रहस्यमय विचार का समर्थन करने के लिए उपयोग किया जाता है. पैनसाइकिज्म. एक दार्शनिक दृष्टिकोण जो कहता है कि चेतना ब्रह्मांड की एक मूलभूत और सर्वव्यापी विशेषता है कि सारा पदार्थ किसी न किसी रूप में चेतना रखता है. तत्त्वम असि संस्कृत. उपनिषदों का एक केंद्रीय शिक्षण जिसका अर्थ है तू वह है. यह व्यक्तिगत स्व आत्मा और अंतिम वास्तविकता ब्रह्म के बीच आवश्यक एकता की घोषणा करता है. यूनियो मिस्टिका लैटिन. रहस्यमय एकता. ईसाई रहस्यवाद में आत्मा का ईश्वर के साथ प्रेम और चेतना में विलय द्वैत से परे. वेदांत. हिंदू दर्शन का एक स्कूल जो उपनिषदों की व्याख्या करता है, आत्मा और ब्रह्म के बीच अद्वैत गैर द्वैत पर जोर देता है। लहर कण द्वैत सिद्धांत जो कहता है कि क्वांटम इकाइयां जैसे इलेक्ट्रॉन या फोटोन संदर्भ के आधार पर लहर समान या कण समान गुण प्रदर्शित कर सकती हैं। यह पांडुलिपि के रूपक के साथ संगति है जिसमें अहम एक लहर है और दैवीय क्षेत्र एक सागर है।